SBS हिंदी हमारी कहानियां फेसबुक पर।
SBS हिंदी सेवा के लिए नई दिल्ली से मनन कुमार का आपको नमस्कार। पेश हैं भारत से मुख्य समाचार। भारी हिंसा के बीच हुए उत्तर प्रदेश ब्लॉक प्रमुख के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की है। शनिवार को संपन्न हुए चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने 825 में से 735 क्षेत्र पंचायतों में चुनाव लड़कर 625 से अधिक सीटों पर जीत का दावा किया है। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी शतक लगाने का दावा किया है। अगले साल आने वाले विधानसभा चुनावों से पहले इन चुनावों को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की इस जीत से प्रसन्न उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ ने इसे पार्टी की नीतियों और जनता की जीत बताया।
आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके प्रेरणा से जो मंत्र आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज से 7 वर्ष पहले इस देश को सबका साथ सबके विकास के रूप में दिया था, पिछले 7 वर्षों के दौरान प्रदेश के अंदर और पिछले 4.25 वर्ष के दौरान प्रदेश सरकार के द्वारा गांव, गरीब, किसान, नौजवान और समाज के प्रत्येक तबके के लिए जो योजनाएं बनाई गई, ईमानदारी पूर्वक बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके तक उन योजनाओं को पहुंचाने का कार्य हुआ। केंद्रीय नेतृत्व के मार्गदर्शन में प्रदेश संगठन और सरकार ने मिलकर के जन जन तक उन योजनाओं को बिना भेदभाव के पहुंचाने का कार्य किया। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के परिणाम उसके जीवंत उदाहरण है।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट के माध्यम से बधाई देते हुए कहा, योगी आदित्यनाथ सरकार की नीतियों और जनहित की योजनाओं से जनता को जो लाभ मिला है वो पार्टी की भारी जीत में परिलक्षित हुआ है। इसके विपरीत विपक्षी पार्टियों ने इन चुनावों को भारतीय जनता पार्टी द्वारा सुनियोजित षड्यंत्र और लोकतंत्र की हत्या बताते हुए नतीजों को खारिज कर दिया है। चुनावी हिंसा के दौरान प्रेस को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी के प्रमुख श्री अखिलेश यादव ने कहा कि ये चुनाव भाजपा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लूट लिए गए हैं।
चुनाव उनके सामने आया तो जनता ने अपना समर्थन दिखाया, लेकिन सरकार ने यह तय कर लिया कि उन्हें लोकतंत्र में बहुमत जिसको मिला उसकी कोई परवाह नहीं है, जो जनादेश है उसकी कोई परवाह नहीं है, और फुल प्लानिंग करके जो चुनाव कराए गए उस हमारे और आपके सामने परिणाम है। लोकतंत्र में ऐसा नंगा नाच किसी सरकार ने नहीं किया होगा जितना भारतीय जनता पार्टी ने नंगा नाच किया है। इतनी गुंडागर्दी जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। अगर कोई पर्चा खरीदने गया है, पर्चा लेकर के पहुंचा है, तो उसका इंतजाम पूरा का पूरा किया प्रशासन ने कि कैसे छीना जाएगा। जिस प्रदेश की पुलिस और जिस प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारी इस बात पे लगे हों कि पर्चा कैसे छीना जाएगा, और उसी समय हम लोगों ने वो चीजें देखी जो कभी कल्पना नहीं कर सकते हम।
कांग्रेस की उत्तर प्रदेश प्रभारी श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्विटर पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि जनता ने वोट देकर BDC चुने, योगी जी के जंगल राज ने गोली, बम, पत्थर, लाठी चलाकर उन्हें धमकाया, उनका अपहरण किया, महिला सदस्यों के साथ बदतमीजी की। बहुजन समाज की मुखिया सुश्री मायावती ने भी ट्विटर के माध्यम से भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए चुनावों में हिंसा का दोषी बताया और योगी शासन को जंगल राज बताया। इन चुनावों के दौरान दिल दहलाने वाले कई वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए, जिनमें महिला की साड़ी खींचने वाला वीडियो, एक IAS अधिकारी द्वारा पत्रकार को पीटे जाने और कई ब्लॉक डेवलपमेंट अधिकारियों के अगवा करे जाने के अलावा गोली और बम चलाने के वीडियो शामिल हैं। भारत का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण विधेयक लाने की ओर अग्रसर हो रहा है। आज विश्व जनसंख्या दिवस पर इसी सिलसिले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ ने राज्य की नई जनसंख्या नीति 2021-2030 का अनावरण किया। राज्य विधि आयोग ने उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण विधेयक 2021 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। इस विवादास्पद विधेयक में 2 से अधिक बच्चे होने पर सरकारी नौकरियों में आवेदन से लेकर स्थानीय निकायों में चुनाव लड़ने पर रोक का प्रस्ताव है। विधेयक में प्रस्तावित सिफारिशों के बारे में बात करते हुए आयोग के चेयरमैन श्री AN मित्तल ने बताया,
हमारा जो टाइटल है वो कंट्रोल, स्टेबलाइजेशन एंड वेलफेयर है। तो इसमें हमने ये प्रस्ताव किया है कि जो व्यक्ति, जो दंपति 2 बच्चों की जनसंख्या नीति को अपनाता है उसे तमाम प्रकार की सरकारी सुविधाएं दी जाएंगी, उसकी जितनी भी राज्य की कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका लाभ दिया जाएगा, और अगर कोई व्यक्ति इस नीति का पालन नहीं करता है तो फिर वो राज्य की कल्याणकारी सुविधाओं का लाभ पाने का अधिकारी नहीं होगा। और इसमें हमने ये भी प्रस्तावित किया है कि अगर ऐसा व्यक्ति जनसंख्या नीति को नहीं अपनाता है तो उसका राशन कार्ड 4 यूनिट तक सीमित कर दिया जाए।
उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने जनसंख्या नीति को आज की जरूरत बताते हुए कहा,
आज की आवश्यकता है कि जनसंख्या नीति आ जाए और सब लोग जिस प्रकार से देश के सामने चुनौतियां खड़ी हो रही हैं उसका मिल करके मुकाबला करें।
कांग्रेस की प्रवक्ता सुश्री सुप्रिया श्रीनेत ने विधायक को भाजपा का अंतर्विरोध बताते हुए कहा,
जनसंख्या के भरोसे जिस जनसंख्या को देख कर आपकी बाछे खिल जाती है जब आप वोट मांगते हैं, वही जनसंख्या आपके लिए अभिशाप बन गई है। और अभिशाप इसलिए बन गई है क्योंकि हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड को, जो जनसंख्या हमारा सबसे पुरजोर हथियार था, हम सबसे युवा राष्ट्र है दुनिया के, हमारे यहाँ सबसे ज्यादा वर्किंग क्लास पॉपुलेशन है, हमारे देश की जनसंख्या को देखकर यहाँ बड़े बड़े लोग निवेश करने को तैयार रहते हैं, कंजम्पशन यहाँ का बड़ा है, अब वही जनसंख्या को आपने अभिशाप बना दिया है।
इस विधेयक को आयोग की वेबसाइट upslc.updc.gov.in पर अपलोड किया गया है। आयोग ने इस मसौदे पर लोगों से आपत्तियां व सुझाव मांगे हैं जो 19 जुलाई तक आयोग को ईमेल statelawcommission2018@gmail.com या फिर डाक के जरिए भेजे जा सकते हैं। अमेरिकी फौज की वापसी के बाद तालिबान के बढ़ते खतरे को देखते हुए भारत ने अफगानिस्तान में कांधार स्थित अपने दूतावास से राजनयिक और कुछ गैर राजनयिक भारतीय कर्मचारी वापस बुला लिए हैं। अब फिलहाल केवल काबुल स्थित भारतीय दूतावास ही काम कर रहा है। विगत कुछ वर्षों में भारत पहले से ही अपने हेरात और मजार शरीफ स्थित 2 दूतावास बंद कर चुका है। इस बारे में विदेश मंत्रालय ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कंधार में भारतीय कॉन्सुलेट को बंद नहीं किया गया है, भारतीयों की सुरक्षा सबसे ऊपर है और सुरक्षा वजहों से अस्थायी तौर पर उनको वापस बुलाया गया है। स्थानीय कर्मचारियों के जरिए कॉन्सुलेट अपना काम कर रहा है, काबुल दूतावास के जरिए वीज़ा और काउंसलर सेवाओं को सुनिश्चित किया जा रहा है। हालांकि भारत में कोरोना के मामले 40,000 के आसपास आ गए हैं, लेकिन फिर भी केंद्र और राज्य सरकारों की चिंताएँ कम होने में नहीं आ रही हैं। इसका एक कारण है कोरोना मामलों में गिरावट की रफ्तार का धीमा पड़ना। संक्रमण की दर जो 15 मई से जून 26 के दौरान 0.78% तक आ गई थी, वह जून 20 से जुलाई 7 के बीच बढ़कर 0.88 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी श्री लव अग्रवाल ने प्रेस वार्ता के दौरान मसूरी के कैंपटी फॉल्स में सैलानियों द्वारा कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाने का एक वीडियो दिखाते हुए कहा,
हम आपके द्वारा फिर से विनती करना चाहते हैं, इस टाइप का कोई भी बिहेवियर इज इट नॉट एन ओपन इनविटेशन फॉर वायरस टू इन्फेक्ट अस? क्या यह ओपन इनविटेशन वायरस के लिए नहीं कि आप हमें इन्फेक्ट कीजिए?
और अब पेश हैं खेल से जुड़ी खबरें। इंग्लैंड के विरुद्ध T20 मैच में भारतीय महिला क्रिकेटर हरलीन देओल द्वारा लिया गया शानदार कैच पूरे भारत में चर्चा का विषय बन गया है। दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर समेत भारतीय टीम के कई खिलाड़ियों और कांग्रेस पार्टी की उत्तर प्रदेश प्रमुख श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा की तारीफ के बाद स्वयं प्रधानमंत्री श्री मोदी ने हरलीन की स्टोरी इंस्टाग्राम पर डाल दी। इंग्लैंड की एमी जोन्स का कैच पकड़ने के लिए हरलीन ने अपनी एथलेटिक स्किल्स का परिचय देते हुए हवा में छलांग लगा दी। उन्होंने 6 रन के लिए जाती हुई गेंद को लपका और जब देखा कि उनका संतुलन बिगड़ रहा है तो उन्होंने गेंद को बाउंड्री के अंदर उछाल दिया और खुद बाउंड्री के बाहर चली गई, लेकिन फिर हरलीन ने बाउंड्री के अंदर डाइव लगाकर गेंद को कैच कर लिया। सचिन ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर हरलीन के कैच वाले वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा, यह एक शानदार कैच था हरलीन देओल, मेरे लिए यह साल का सर्वश्रेष्ठ कैच है। आज के समाचारों में इतना ही। SBS हिंदी सेवा से मनन कुमार को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
SBS हिंदी हमारी कहानियां फेसबुक पर।